बहुत बहुत शुक्रिया असरा गौरी साहिबा, आप स्पोक्स पर्सन है कराची में जमात इस्लामी की, और आपसे बात करने का मेरा मकसद ये है कि हर साल की तरह इस बार भी पाकिस्तान में जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दौरान बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई जाती हैं औरतों के हकूक के हवाले से, उनको बराबरी का जो है स्टेटस माशरे में दिलाने के हवाले से, उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी और आपके थॉट प्रोसेस से ताल्लुक रखने वाले भी बहुत सारे लोग जो हैं इस बहस में हिस्सा लेते हैं, उनका थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इस पे मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा। लेकिन मेरा मकसद जो है इस सारे डिस्कशन में वो क्लैरिटी है। मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारी इश्यूज जो मीडिया पर, स्पेशली सोशल मीडिया पर डिस्कशन होती है, तो कन्फ्यूजन बहुत सारी क्रिएट हो जाती है, तो मेरी कोशिश ये है कि हम इसको क्लियर कर लें, बहुत सारी चीजों को क्लैरिटी। इसीलिए मैंने बहुत सारी इस पूरे इशू को कुछ सेगमेंट में ब्रेक किया है और एक एक सेगमेंट में आपके साथ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले ये जो मूवमेंट है उसका ऑब्वियसली बुनियादी मकसद औरतों को बराबरी की पोजीशन पे लाना है माशरे में, और अगर यही मकसद है और जिसपे गालबन आप भी उसमें शामिल हैं, आपकी जमात भी और आपकी मूवमेंट भी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कानून मौजूद हैं क्या वो काफी हैं इस मकसद को पूरा करने के लिए, या आपको लगता है कि पाकिस्तान में मजीद कानून या मजीद लेजिस्लेशन की जरूरत है?
वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब कि आपने हमारा भी मौका जानने की बहुत अच्छी कोशिश की। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर जो तहरीक भी चलाई जा रही है और ख़वातीन के हुकूक भी मांगे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के आइन में भी वो तमाम कवानीन मौजूद हैं और हमारा इस्लाम भी ना, देखें औरत को अल्लाह ताला ने मर्द औरत को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है ना, उन्हीं की मखलूक है, और अल्लाह ताला ने दोनों के राइट्स रखे हैं और वो राइट्स कोई छुपे हुए नहीं है, बहुत खुले हुए राइट्स हैं। मसला यहाँ पे आता है कि जब औरत को वो राइट्स नहीं मिलते, और हमारा हम भी औरत के लिए आपको पता है काम करते हैं, और हम हर साल ही औरत के लिए, हर साल क्या बल्कि पूरा साल ही हम औरत के लिए खड़े होते हैं, उसके हुकूक के लिए भी, उसकी वेलफेयर के लिए भी। दरअसल जो क्लैश आता है वो यहाँ पे आता है कि औरत के असल मसाइल क्या हैं और उनको मोड़ा किस तरह। देखिए औरत के लिए कानून मौजूद भी हैं लेकिन ऐड भी करने की ज़रूरत है। ऐड करने की ज़रूरत सबसे पहले तो यहाँ पे है कि औरत के साथ जब ज्यादती होती है, आप ये देखें कि असम्बली ने एक कानून पास किया, ज़ैनब केस वाला मामला मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि आपकी असम्बली ऐसे शख्स के लिए जो मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती, ना सिर्फ ज्यादती करता है बल्कि उनको कत्ल कर देता है, उसके लिए आपकी असम्बली ये कानून पास कर देती है कि उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी। तो ये तो सबसे बड़ा हक तो आपने औरत का यहाँ मार दिया कि एक तो उसके साथ ज्यादती हो रही है, दूसरा वो कत्ल हो रही है, तब भी आप उस दरिंदे को छोड़ रहे हैं। तो कवानीन तो बनाने चाहिए, कवानीन तो उस सूरत में भी बनाने चाहिए कि जब औरत के साथ अगर कोई उसको हरास करता है, उसको वर्किंग प्लेस में हरास करता है, उसको बसों में हरास किया जाता है, उसको रास्तों से गुजरते हुए हरास किया जाता है, तो ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि जो उस हरास करने वाले को ये खौफ हो कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये कानून के शिकंजे से मैं बच नहीं सकूँ। तो आपका सवाल कि औरत के लिए क्या कवानीन काफ़ी हैं, बहुत कवानीन हैं लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता ना, उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर मसला खड़ा हो।
तो बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन का मसला, आपकी नज़र में कोई मजीद नए कानून आपकी नज़र में ऐड करने की जरूरत नहीं, आप ये नहीं देखती जरूरत?
देखिए मजीद कानून आप उनके ऊपर अमल दरामद तो कीजिए ना, जो कवानीन पहले से मौजूद हैं उनके ऊपर तो अमल दरामद कीजिए, कवानीन मौजूद हैं। आपका इस्लाम कहता है कि औरत को तमाम हुकूक दो जो अल्लाह ने उसे दिए हैं ना, औरत के हुकूक में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसके हुकूक दरअसल हैं क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना कि औरत के हुकूक क्या हैं और क्या पेश किए जा रहे हैं।
अच्छा, तो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो इम्प्लीमेंटेशन आपका मौकफ ये है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो आपका क्या सजेशन है कि किस तरह इस पे अमल दरामद हो सकता है पाकिस्तान में?
देखिए रियासत बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है ना, क्योंकि रियासत ही जिम्मेदार है अपनी आवाम की, और इसी तरह से औरत की भी रियासत ही जिम्मेदार है। अल्लाह ताला ने औरत को जब मतलब जो जिम्मेदारियां बांटी है ना, तो उनके अंदर मर्द की अलग जिम्मेदारी रखी और औरत की अलग जिम्मेदारी रखी। औरत की जिम्मेदारी है नस्ल नौ की परवरिश करना, उसे परवान चढ़ाना, इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत को नान नफके से बिल्कुल आजाद कर दिया ना, यानी हल्का कर दिया। आज हम ये देखते हैं कि औरत के ऊपर वो नान नफके वाला बोझ भी डाला जा रहा है, और ना सिर्फ ये कि वो बोझ डाला जा रहा है बल्कि ये उसके हुकूक को गर्दान पे डाला जा रहा है कि ये उसका हक है, ये उसका हक नहीं है। उसके लिए हक क्या है उसका, कि उसको अच्छी तालीम दी जाए, उसकी अच्छी तरबियत की जाए, और सबसे बड़ा जो औरत का हक है वो है सिक्योरिटी, औरत को तहफुज दिया जाए।
अच्छा,
हमारे यहाँ
तो ये तो लीगल एस्पेक्ट की बात होगी। आप मैं जो समझाऊं, आपकी नजर, आपके मौकफ ये है कि जो ऑलरेडी कानून है उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, पहले आप उन पे इम्प्लीमेंटेशन करें तो बाद में दूसरे कानून की बात करें। एग्जैक्ट यही कह रही है, राइट? ये तो लीगैलिटी के लीगल एस्पेक्ट की बात होगी। सोशल लाइफ में ऑब्वियसली हर जगह कानून तो लोगों को ही मजबूर नहीं कर सकता कि आप ये करें, फलाना करें, वो करें। सोशल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे आप कहाँ पे गैप्स देखती हैं? आपको ये लगता है कि बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है या रवैये चेंज करने की जरूरत है सोसाइटी के लेवल पे? और अगर हैं तो कहाँ हैं आपकी नजर में?
बिल्कुल, बहुत शदीद जरूरत है इस वक्त सोसाइटी को अपना रवैया चेंज करने की औरत के हवाले से। देखिए, एक वक्त था कि औरत को आप इंसान ही नहीं समझते थे ना, औरत को सिर्फ आप एक शय समझते थे कि जो घर में रखी हुई शय है, जिस तरह और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब जब सोसाइटी चेंज हो रही है, माशरा चेंज हो रहा है, औरत खुद भी अपने आप को एक इंसान समझाना चाहती है ना कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक इंसान समझा जाए। तो सोसाइटी को वो रवैया चेंज करने की जरूरत है, हमारे आज के माशरे के मर्द को भी ये रवैया अपना चेंज करने की जरूरत है कि वो औरत को सबसे पहले तो एक इंसान समझे ना। फिर जब आप किसी को इंसान समझेंगे तो उसके राइट्स देंगे ना। अब औरत कहाँ कहाँ पिसती है, आप ये देखें कि जो हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा, जो ये समझ लें कि बदनसीबी समझ लें कि जागीरदारा निजाम जो है उस तबके के अंदर से देख लें आप, के वो खुद क्या करते हैं औरतों के साथ। हमारे यहाँ कुरान से शादी, हमारे यहाँ जायदाद ना देना, हिस्सा ना देना औरतों को, तालीम के मौके ना मिलना, ये सारी वो चीजें हैं जो औरत का हक है और ये उसे मिलनी चाहिए। अच्छा, सोसाइटी अपना रवैया चेंज करेगी तो ये सब कुछ मिलेगा। सोसाइटी ये एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, औरत भी एक इंसान है, उसे भी ये सारे हकूक मिलने चाहिए, ये उसके राइट्स हैं।
तो वो
जब
कैसे
सोसाइटी
सोसाइटी
को
के रवैये अमूमन, तो ऑब्वियसली इस तरह की कैंपेन से या कोई मीडिया कैंपेन से उसी तरह ही होता है ना गालबन। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये होनी चाहिए ये सारी
बिल्कुल आप
कैंपेन्स? ऑब्वियसली
होनी चाहिए, बल्कि आप ये देखें कि हमारे तो स्लोगन तो यही है ना कि आप औरत को स्ट्रांग कीजिए, स्ट्रांग वुमेन, स्ट्रॉन्ग फैमिली और स्ट्रॉन्ग माशरा। ठीक है, आपकी औरत अगर मजबूत नहीं होगी तो आपका माशरा बिल्कुल मजबूत नहीं होगा। हमारा स्लोगन ही यही है कि आप औरत और फैमिली को और माशरे को, इन तीनों चीजों को बिलतरतीब साथ रखिए, हम इनको अलग नहीं कर सकते। अगर आपने तनहा कर दिया, जिस तरह के हम ये देख रहे हैं कि दूसरे भी आप स्लोगन देख रहे होंगे कि औरत को तनहा कर दिया जाए, हटा दिया जाए, काट दिया जाए, ये उसके साथ कोई उसको हक दिलवाने वाली बात नहीं है। ये उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा कि अगर औरत को तन्हा कर दिया जाएगा। औरत और मर्द अल्लाह ने जोड़ा बना के पैदा किया है ना, तो आप उसको तन्हा कर देंगे तो आप तो उसके साथ बहुत ज्यादती करेंगे।
अच्छा, दूसरा, एक तो हमने बात की लीगल एस्पेक्ट पे और सोसाइटी में लोगों को क्या चेंजेस की जरूरत है। आप ऑब्वियसली इस इत्तेफाक करती हैं कि काम की जरूरत है और बहुत सारा काम करने की जरूरत है इस मामले पे। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है फैमिली सिस्टम। और अब तक जो मैं समझाऊं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के ज्यादातर जो फोकस है फैमिली सिस्टम पे और जितने भी एक्टिविस्ट हैं ये वुमेन राइट के हवाले से और बाकी लोगों का जो एक पॉपुलर ओपिनियन ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो फैमिली सिस्टम चला आ रहा है सालों से, नस्लों से, पाकिस्तान में, वैसे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, उसमें जो रोल्स डिफाइन है, यानी फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे होते हैं, तो वाइफ का एक रोल डिफाइन है, हस्बैंड का एक रोल डिफाइन है, बच्चे हैं वो सारे हैं। जनरली तसव्वुर ये किया जा रहा है, एक आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है कि वो जो स्ट्रक्चर है फैमिली का, दैट इज नॉट फंडामेंटली इन फेवर ऑफ जो खवातीन है, खासकर पाकिस्तान में। तो उस स्ट्रक्चर को गालबन चेंज करने की जरूरत है, उसमें रोल्स को रीअलाइन करने की जरूरत है, किरदार जो लोगों के हैं फैमिली के मेंबर्स के, उनको चेंज करने की जरूरत है। आपका इस मामले में क्या मौकफ है कि जो सालों से, जनरेशन से फैमिली के रोल्स चले आ रहे हैं, जो फैमिली सिस्टम इस वक्त है मजमूई तौर पर पाकिस्तान में, वो सही है या आपकी नजर में उसको रीअलाइनमेंट की जरूरत है?
देखिए, ये तो क्वेश्चन ही मुझे आपका समझ नहीं आया कि आपने कहा कि रोल्स जो है वो चेंज करने की जरूरत है। आप रोल क्या चेंज करेंगे, मतलब आप शोहर को बीवी बना देंगे, बीवी को शोहर बना देंगे, मतलब क्या रोल कैसे चेंज हो सकता है। ये तो वो रोल्स हैं जो अल्लाह ने दे के भेजे हैं ना। अल्लाह ने आदम को शोहर बनाया, हव्वा को उनकी बीवी बनाया, बच्चे पैदा किए तो बच्चे उनके बच्चे कहलाए। अब रोल्स तो चेंज करने का मतलब, किरदार चेंज करने का मतलब तो ये है कि आप बीवी को शोहर बना दें, शोहर को बीवी बना दें, तो ये
मेरा
तो
मेरा ख़ालबन उसमें, लाइक आई सेड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई मे बी मिसिंग समथिंग, लेकिन आई थिंक इम्प्रेशन एक जनरली, इसका इम्प्रेशन ये है कि जो किरदार से मेरा मुराद है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फैमिली में, वो उनको, मतलब जो लोगों के जहन है या जो जो एक्सपेक्टेशंस है वो बदलने की जरूरत है, कि जो औरत से एक्सपेक्ट किया जा रहा है या मर्द से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं. इज दैट, डू यू अग्री विद दैट, या आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं है?
बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है करने में, करने चाहिए, जहां जहां जरूरत हो वहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये किए भी जाते हैं और करने भी चाहिए। लेकिन आप ये रोल बिल्कुल चेंज ही कर दें और आप ये कहें कि नहीं, औरत का जो है वो घर से कोई ताल्लुक ना हो, या औरत का बच्चों से कोई ताल्लुक ना हो, या औरत की जिम्मेदारी जो है वो डाल दी जाए कि वो कमा कर भी लेकर आए, तो ये औरत का हक नहीं होगा, औरत के साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी, ये ज्यादती होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर औरत को नान नफके से, बाहर की जिम्मेदारियों से अगर बचा के रखा है, तो इसमें बहुत बड़ी फेवर है औरत की, बहुत बड़ी आप ये समझ लें हिकमत है कि वो बिल्कुल बेफिक्र होके नान नफके से, और वो अपनी औलाद की परवरिश करती है, बहुत अच्छे से अपने घर को संभालती है। लेकिन बवक्ते जरूरत आज भी ये होता आया है और हमेशा से होता आया है कि अगर औरत भी उसके अंदर अपना हिस्सा डालना चाहती है और मर्द भी अगर घर के कामों में हिस्सा लेता है, खुद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि उनकी सीरत क्या कहती है कि वो तो अपनी नौ अजवाज के होते हुए अपना कुर्ता खुद सिया करते थे, तो अपने बर्तन खुद धोया करते थे। इसके अंदर लड़ाई और झगड़ा या इसको इश्यू बनाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो तरबियत वाली बात है ना कि आप हमारे माशरे के अंदर तरबियत कैसे की जाए, हमारे मर्दों की भी, हमारे बच्चों की भी, हमारी बच्चियों की भी, यानी इन दोनों को एक दूसरे का मद्दे मुकाबल ना खड़ा कर दिया जाए बनाकर कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगे। ये तो एक दूसरे के मुआवन और मददगार हैं, इनको तो जोड़ा बना के भेजा गया है, जहां कमजोरियां हैं वो दूर की जाए।
तो आप, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र में इस वक्त जो मजमूई तौर पे फैमिली सिस्टम है, उसमें पाकिस्तान में भी, और बाकी मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ आपसे इस वक्त, उसमें आप कोई देख रही हैं कमजोरियां जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है?
देखिए, कमजोरी तो सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना वो ये है कि आप भी अभी इस वक्त हमारे सिस्टम के अंदर औरत को उसके राइट जिस तरह मिलने चाहिए, उसकी इज्जत, उसकी कदर, उसको वो मोहब्बत, उसको वो तवज्जो, वो नहीं मिलती। दरअसल ये है जो औरत चाहती है। एक जो आप एक आम औरत का भी अगर व्यूज लेंगे या उससे पूछेंगे ना कि वो क्या चाहती है, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि मैं अपने शोहर के साथ जाके ऑफिस में बैठ जाऊं, मेरी डिमांड ये नहीं, बल्कि वो ये चाहेगी कि उसको घर में तवज्जो मिले, उसको जब उसका शौहर शाम को घर आता है तो दो जो बोल उसके साथ मीठे बोले, उसके बच्चों को तवज्जो दे। ये है एक औरत की जो, ये आप ये समझते हैं कि ये 200-300 खवातीन निकल के बाहर, मतलब हमारा इनके साथ कोई ऐसे इख्तलाफ इस तरह से नहीं है कि हम कोई इनके अगेंस्ट खड़े हो गए, बल्कि इख्तलाफ हमारा यहाँ पे होता है कि स्लोगन्स क्या लेकर आ रहे हैं आप, उसमें लपेट के कुछ और लेकर आ रहे हैं। हमारी औरत के मसाइल ये नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो औरत ने हमेशा मर्द का साथ दिया है, मर्द भी औरत का साथ देता है। खुद मैं आपको बताऊं कि मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरे बच्चे, मेरे बेटे मेरा मेरी हेल्प करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं, तो हमारे तो घरों के अंदर ये हो रहा है कि मर्द बीवियों की मदद करते हैं, बीवियों को जब जरूरत पड़ती है वो शोहरों की मदद करती है, जॉब भी करती है, बाहर भी निकलती है। मसला यहाँ पे आ रहा है कि आपने उन दोनों को एक दूसरे का मुखालिफ मद्दे मुकाबिल बना के खड़ा कर दिया है, ये सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए अच्छा नहीं है।
लेकिन असल में आपसे वही बात करना चाह रहा हूँ, एंड टू बी फेयर, जो जिस ग्रुप की आपने बात की, 200-300 लोगों की है जो भी, उन पे तंकीद भी होती है, लेकिन आप भी इस बात से ऑब्वियसली डिनाई तो नहीं करेंगी कि मोस्टली जो लोग और खासकर ख्वातीन आती हैं, वो एक वो एक अच्छी इंटेंशन से शायद आती हैं कि लोगों की और स्पेशली ख्वातीन की जो चैलेंजेस हैं उनको दूर किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी सफरिंग को दूर किया जाए. तो क्या आपका ये मानना है कि वो भले इंटेंशन अच्छी लेके आ रही हैं, लेकिन उनका रास्ता गलत है, या मतलब किस किस तरह आप उसको देख रही हैं? क्योंकि इवेंचुअली आप भी और सब मिलके ये चैलेंजेस तो दूर कर, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस या बाकी जो चीजें घरों में हमारे होती हैं उससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे, वो तो होता ही है, राइट? तो आप भी उसको दूर करना चाहती हैं, बाकी लोग भी उसको दूर करना चाहते हैं, तो फिर मसला कहाँ पर है?
देखिए, मसला मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि मसला हमारी औरत के, मसला क्या है इसी चीज के ऊपर तो झगड़ा है कि मसला क्या है। आपने मसला बना दिया कि मोजा ढूंढना मसला हो गया, आपने मसला बना दिया खाना गर्म करना मसला हो गया। हमारी औरत के मसाइल ये नहीं है, हमारी औरत का मसला ये है कि आप उसे तालीम में जगह दीजिए, आप उसकी सिक्योरिटी को मुमकिन बनाइए कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो उसको तहफ्फुज़ मिले, उसको तालीम के मौके उतने मिले, उसको जायदाद में हिस्सा मिले, उसकी कुरान के साथ शादी ना की जाए, उसको वनी ना किया जाए। हमारी औरत के मसाइल ये हैं, हमारी औरत का मसला ये नहीं है कि वो मौजा ढूंढे या वो खाना गर्म ना करे। ये वाले जो स्लोगन्स हैं, ये आपको नहीं लगता कि ये स्लोगन्स डिट्रैक्ट करने वाले हैं?
मैं अभी से उसका वो जानना चाह रहा हूँ. ऑब्वियसली आप इस पे ज्यादा नजर रखती हैं और इस क्या कहते हैं मूवमेंट का हिस्सा भी हैं, लेकिन मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस चीज पे अगर कोई ये कहता है, एंड अगेन ये वही उस पे बात चली जाती है कि रोल्स रीडिफाइन करने की बात है, कि खाना पकाना या घर के जो भी काम करना, तनकीद ये है कि औरत को इस फैमिली सिस्टम में उन कामों तक महदूद कर दिया गया है. क्या ये सही असेसमेंट है?
आपको लगता है कि अभी इस वक्त देख लें, आप कॉलेजेस का रेशियो देख लें, खुद मेरे बच्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं कि वहां पे लड़कियों का और लड़कों का रेशियो कितना है। अगर एक ग्रुप के अंदर 3 लड़के होते हैं तो 8 लड़कियां होती हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि औरत को घर में महदूद करके रख दिया है?
तो ऐसा नहीं है आपकी नजर में, पाकिस्तानी सिस्टम को
ऐसा
देख के आपको ऐसा नहीं लगता?
नहीं है, लेकिन आप ये अगर समझे कि औरत को घर से ही बाहर निकाल दिया जाए तो ये औरत के साथ क्या होगा?
एक और चीज फाइनली मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो आपने थोड़ा सा उस पर टच किया पहले. दुनिया में तकरीबन हर मामले में, पॉलिटिक्स से लेकर स्पोर्ट्स तक, अब दिन ब दिन बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. और एक इम्प्रेशन और एक जो मूवमेंट है वो ये है, जो मुझे लग रहा है शायद आप इससे इत्तेफाक नहीं करती, वो जो भी आपने इस पे टच भी किया, कि दुनिया में कोई ऐसा रोल नहीं है मर्द का जो कि औरत ना कर सके, और दुनिया में शायद कोई ऐसा रोल नहीं है औरत का जो मर्द, यानी गालबन इंटरचेंजेबल है दोनों. कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई औरत होने की वजह से कुछ ना कर सके या कोई मर्द होने की वजह से कुछ ना कर सके. डू यू अग्री विद दैट कि ऐसा ही है, कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि औरत और मर्द एक दूसरे की तरह ना कर सके, या उसमें आप देखती हैं कि नहीं कुछ कुछ है फर्क?
नहीं, देखिए, औरत करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आज औरत क्या नहीं कर रही, जहाज भी चला रही है औरत, आपकी औरत जंगों में भी जा रही है, हर जगह सब कुछ ही कर रही है। लेकिन बस कुछ अल्लाह ताला ने कुछ हुदूद, देखिए सबसे पहले तो एक बात जहन में रख लें कि एक ही मामले को दो तरह से देखा जाता है। एक तो ये कि एज ए मुस्लिम, देखिए हम बाहर की कंट्रीज की बात नहीं करेंगे ना, इसलिए नहीं करेंगे कि हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, एक मुसलमान मुल्क है ना, और हम खुद एक मुसलमान है। छोटा सा भी कोई इदारा होता है ना, तो आप उस इदारे को जब चलाने के लिए उस इदारे को जब चलाते हैं तो आप कुछ रूल्स बनाते हैं और आप उस रूल्स को फॉलो करवाते हैं। आप कहते हैं अगर आपने इधर इस इदारे में रहना है तो ये रूल्स है, अगर आप इनको फॉलो नहीं करना चाहते तो आप इदारे से फारिग है। आपकी वजह से इदारा अपने रूल्स को चेंज नहीं करता। तो ऐसे ही अल्लाह के कवानीन हैं और अल्लाह की हुदूद हैं, और हमारा आईन ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर एज अ मुस्लिम अगर जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह की उन कवानीन और उन हुदूद के अंदर रहते हुए गुजार दी। आप उन हुदूद का पास कीजिए, सब कुछ कीजिए।
और दूसरा ये कि ये जो एक आई थिंक मैंने भी टीवी डिस्कशंस पे और सोशल मीडिया पे, आपको पता ही है लोग अमूमन एक्सट्रीम सिचुएशंस अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक एक अनफेयर डिस्कशन उस मामले में चली जाती है जब लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कि एक तरफ से ये तनकीद होती है कि ये जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं या जो खासकर लिबरल मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो गालबन फॉरेन फंडेड है, या एक मतलब एक गलत उस पर दिया जाता है, और दूसरी तरफ रिलीजियस तबके पे ये वो किया जाता है कि ऑब्वियसली आप समहाउ आप लोग बिल्कुल केयर नहीं करते औरत के उसके हवाले से, उसको कैद करके रखना चाह रहे हैं. डू यू थिंक दैट्स फेयर कि लोगों की डायरेक्ट नियतों पे शक कर लेना, और बजाय इसके कि सब्सटेंस को देखें कि वो करना क्या चाह रहे हैं, कि एक दूसरे को नेम कॉलिंग जो है, मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
अच्छा देखिए, एक तो सबसे बड़ी गलतफहमी ये, और ये ज्यादती भी होगी कि जो जो औरत के ऊपर जो जुल्म होता है या जो ज्यादती होती है उसके ऊपर इस्लाम को चढ़ा देना ना, इस्लाम का उसको शेल्टर दे देना कि ये इस्लाम की वजह से हो रहा है। अब आप देखें, कुरान से शादी इस्लाम की वजह से नहीं हो रहा, इस्लाम को ना जानने की वजह से हो रहा है। बनी कर देना दीन की वजह से नहीं हो रहा, दीन से लाइमी की बिना पर हो रहा है। तो औरत के साथ जो ज्यादती हो रही है वो कोई कुरान की वजह से नहीं हो रही ना, और यही वो गलती है कि जो हमारे बहुत सारे अफराद ये गलती करते हैं और वो इसके ऊपर इस्लाम का नाम लगा देते हैं कि जी क्योंकि ये मजहबी लोग हैं इसलिए ये कर रहे हैं। आप देखें, जागीरदाराना निज़ाम मजहबी निज़ाम नहीं है। आप उनके घरों की हालत देखें, उनकी जो अंदरूने खाना जेलें बनी हुई है वहां पे जो औरत का हाल है, ये सारा तबका कौन है? एक तरफ ये तबका औरत के साथ की ज्यादती करता है, दूसरी तरफ यही तबका आके खड़ा हो जाता है औरत को भूख मांगने के लिए, उसको रोड पे निकाल के ले आता है। एक और बात जो आपने कही कि हम क्यों उनकी नियतों पे शक करते हैं, तो देखिए आपको मैंने बताया कि हमारे स्लोगन्स क्या हैं, हमने अपने स्लोगन्स क्या रखे कि स्ट्रॉन्ग वुमेन। सबसे पहला हमने कहा कि औरत मजबूत हो, औरत मजबूत होगी तो फैमिली मजबूत होगी और तभी मुआशरा मजबूत होगा। आप स्लोगन तो उनके देखिए वो क्या कहते हैं। अभी मैं कल ही देख रही थी 8 मार्च के स्लोगन, तो आप यकीन करें कि मतलब मैं उनको अपनी वॉल के ऊपर नहीं शेयर कर सकी वो ऐसे स्लोगन से। आप उसकी आड़ में क्या लाना चाह रहे हैं, मतलब आप कहते हैं, आप अभी मैं एक पोस्टर देख रही थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए। ये कौन सी औरत का हक है, ये कहाँ है ये औरत का हक? आपको इसमें कोई औरत का हक नजर आता है? आपको नजर आता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ लेके जाया जा रहा है? तो यहाँ इख्तलाफ होता है, बाकी हमारा कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। औरत के लिए हम तो काम कर रहे हैं, हम सिर्फ आवाज नहीं उठा रहे। मैं आपको बताऊं जमात इस्लामी की तर्जुमान की हैसियत से कि हम पूरा साल औरत की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हमने जेलों में औरतों के लिए काम किया, हमने औरतों को हर हर जगह प्रोटेक्ट भी किया, उनको सिखाया भी सब कुछ। हमारी तो तंजीमें ये बाकायदा काम कर रही है औरत के लिए। हम सिर्फ नारे नहीं लगाते या हम सिर्फ लोगों के सामने खड़े होकर आवाज नहीं उठाते, बल्कि हम बाकायदा मैदान में मौजूद हैं, अमल कर रहे हैं। तो जब इस तरह के स्लोगन देखते हैं तो आप खुद बताइए कि क्या सोचना चाहिए। ये स्लोगन आपको क्या बता रहा है? क्या ये औरत का कोई हक मांग रहे हैं?
अच्छा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।